आप जानना चाहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, साधना के बल पर ईश्वर में मन लगाया जा सकता है, ये कैसे संभव है? इसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन है या शर्त है वो ये है कि जीव इस संसार को दुख रूप समझता हो, परिवर्तनशील नाशवान समझता हो, और उसके अंदर इस बात की समझ हो कि बिना ईश्वर के दर्शन किए या बिना ईश्वर को जाने मैं संसार के किसी भी मेथड से संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। तो उसकी जो मानसिक कंडीशन है ये उसकी प्री कंडीशन, ये उसकी अंदर से स्थिति होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जो ये बात कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं ये भी तो हम पहले सुने। जो अभी संसार में रुचि ले रहा है, संसार में विकास कर रहा है और सारी जीवन की आशा उसके संसार में ही मौजूद है, वो साधना के बल पर कैसे ईश्वर को मन लगा सकता है? ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है ईश्वर भक्ति कि आप जोर लगा के सिमरन करके ईश्वर को मन लगा लेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने तो यहां तक कहा है जो ईश्वर पे मन लगाना चाहता है। एक गृहस्थी उनके पास आया था, उनका शिष्य था, उसने रामकृष्ण परमहंस से पूछा क्या ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? तो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं उससे, यदि विद्या का परिवार हो, विद्या का परिवार का मतलब यदि घर में ऐसे सदस्य हों जो इस अध्यात्म विद्या अर्थात ईश्वर के महत्व को समझते हों, जिनके अंदर ईश्वर भक्ति करने की इच्छा हो, इस मार्ग पर चलते हों, ऐसे परिवार को विद्या का परिवार कहा जाता है। संसारी लोग तो विद्या का परिवार समझेंगे जहां घर में सब ने पीएचडी कर रखी हो, एमबीए कर रखा हो, इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर रखी हो, ये विद्या का परिवार। ये विद्या का परिवार नहीं, इसको तो शास्त्रों में अज्ञानता कहा गया। विद्या उसे कहते हैं जो मनुष्य ईश्वर के महत्व को समझता हो और ईश्वर के लिए जीने की उसके अंदर तमन्ना, उसके अंदर विद्या है। और ऐसा जिसका परिवार हो जिनके अंदर इस प्रकार की विद्या हो, वहां वो कहें वहां ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं यदि विद्या का परिवार होगा तो उस पैसे का इस्तेमाल वो भोगों की वृद्धि के लिए नहीं करेगा, वो निष्काम सेवा के लिए करेगा। तो आपके पास यदि बहुत संपत्ति है भी, बहुत धन है भी, तो भोगने की परमिशन ही नहीं सकते थे, तो किसके लिए कमाओगे ज्यादा? कमाते हो भोगते हो तो सीधी सी बात है आप पांच विकार बढ़ाओगे अपनी। पांच विकार बढ़ाओगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो आपका निरंतर पतन होगा। तो ऐसा पैसा किस काम का जो मनुष्य का पतन करता रहे निरंतर। इसीलिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जितना धन चाहिए उतना तो कमाने की परमिशन है। उससे ज्यादा यदि भाग्यवश आ भी जाए हर चीज आपके हाथ में नहीं होती। किसी को जन्म से ही बड़ी संपत्ति मिल जाती है तो इसीलिए उसको भोगने की परमिशन ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया जो रामकृष्ण परमहंस ये बात कह रहे हैं कि साधना के बल से ईश्वर का मन लड़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर दो चीजें ऑलरेडी मौजूद है, एक विवेक और दूसरा वैराग्य। संसार के भोग प्रति उसके मन में राग नहीं और ईश्वर क्या है मैं कौन हूं ये संसार शरीर की रचना कैसे होती है मृत्यु क्या होती है पुनर्जन्म क्या होता है मरने के बाद सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या कुछ बच जाता है यदि बचता है तो क्या बचता है ये तो बेसिक चीजें। इसकी यदि समझ आपको नहीं है तो फिर ईश्वर की आवश्यकता भी आप क्यों महसूस करोगे। यदि आपने ईश्वर को मान भी रखा है तो एक ही चीज के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करोगे आप कि संसार की किसी मुसीबत में जब फंसोगे संसार जब आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है आपकी होशियारी आपकी सामर्थ्य यदि उस दुख को दूर नहीं कर पा रही है तब आप एक अनजान ईश्वर से प्रार्थना करते हो प्रभु अब तो सब कुछ करके देख लिया कुछ हो ही नहीं रहा है अब तो तू ही मदद कर सकता। संसारी लोग जो ईश्वर को मानते हैं वो इसी रूप में ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन सत्पुरुष जब कोई बात कह रहा है तो उसके कहने का एक ही मतलब है कि ईश्वर को जानने के लिए ये व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और ईश्वर को जानने के लिए ही वो सत्पुरुष उस जिज्ञासु का मार्गदर्शन कर रहा है। इसीलिए जब तक हम ये बैकग्राउंड दिमाग में नहीं रखेंगे इस प्रश्न के उत्तर का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग जो सिमरन करते हैं इस बैकग्राउंड में देखें अपने आप क्या हमारी मानसिक बैकग्राउंड इस तरह की है। इसीलिए महाजी ने समतावास में लिखा ये बात बगैर विवेक और वैराग्य के सही अभ्यास नहीं हो सकता। इसको हम अभ्यास कहते हैं वास्तव में वो विवेक और वैराग्य के साथ होता है। संसार को मैंने समझ लिया ये क्या है जो चीज निरंतर परिवर्तनशील है और जो चीज परिवर्तनशील है वो नाशवान तो है उसमें नाश होने होना तो ये मैं संसार के बारे में सोचता हूं। महाराज कहते प्रेमी अपने देह के बारे में तो सोच संसार के बारे में बाद में सोचना पहले अपनी देह के बारे में सोच। ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है इसमें नहीं हो रहा निरंतर नाश की तरफ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। जन्म लेते ही ये देह विकसित होती दिखाई पड़ती है हमको लेकिन जन्म लेते ही ये निरंतर मौत की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इसकी यदि 60 की आयु है तो पैदा होने के बाद इसमें 60 साल चलना है तो हर वर्ष इसमें से एक कम होता चला है निरंतर मौत की तरफ। और मैं इस देह को अपना स्वरूप समझे बैठा हुआ, ये मेरा स्वरूप है। तो ये मेरे अविवेक की हालत है। ऐसी बुद्धि से आप विचार करो, समता विलास कभी समझ में आ सकती है, कभी समझ में नहीं आएगी। जिसकी ऐसी बुद्धि है, इसको माँ जी कहते थे जड़ बुद्धि। एक और शब्द इस्तेमाल करते थे, मद होश बुद्धि। जिसकी बुद्धि में ये नशा चढ़ा हुआ है कि मैं शरीर हूं, ये मदहोश बुद्धि है। तो ऐसी मदहोश बुद्धि जब तक सत विचारों को समझकर उनका मनन करके जागृत नहीं होती, तो उसके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने का शौक, ईश्वर को प्राप्त करने की जरूरत कैसे उसके अंदर पैदा हो सकती है। इसलिए यदि ये विवेक मेरे अंदर आ गया है कि मैं कौन, इस देह के नाश होने पर मेरा क्या होता है, जिसे इस बात की समझ आ गई है मैं जीव हूं, मां जी इसको सिखा रहे हैं, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नींद, मंगत खोज सत शांति औध जात है भी। वाणी क्या सिखा रही है? संसार का एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। ये संसार सराय की तरह से जीव मुसाफिर नहीं, और जीव उसी प्रकार मुसाफिर है जैसे कोई इस संसार में यात्रा करने चलता है तो रास्ते में कुछ दिन के लिए किसी धर्मशाला में ठहर जाता है। मंजिल दूर है उसकी, आगे की यात्रा करनी है, लेकिन वो एक पल भी नहीं भूलता कि मैं मुसाफिर हूं। इसमें कुछ वक्त के लिए मैं ठहरा हूं, फिर मैंने मंजिल की ओर जाना है। कौन सी मंजिल? मंगत खोज सत शांति, सत शांति की मंजिल। औध जात है ये धर्मशाला में रहने के लिए, इस देह रूपी धर्मशाला में रहने के लिए जो तुझको अवधि मिली है, जो टाइम मिला है, ये निरंतर बीत रहा है। ये होश तेरा बना रहना चाहिए। और हम कैसे बेहोश होकर चलते हैं? अभी तो मैंने 20-22 साल तो बच्चे पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, उनके सारे करियर की सोचनी ही सोचनी है मैंने, उनके लिए एक मकान तो मैंने बनाना ही है, फिर उनकी शादी तो करनी ही है, उसके बाद मुझे फुर्सत मिलेगी तब सोचूंगा। तो ये संसारी लोगों की बातें हैं जिनके अंदर विवेक नहीं है। जिनके अंदर विवेक होता है वो एक दिन बात की भी नहीं सोचते, वो आज ही करके छोड़ते हैं। तो जब तक मैं अपनी इस स्थिति को नहीं समझता हूं, तब तक मेरे अंदर ईश्वर की तरफ बढ़ने की उमंग कैसे पैदा होगी? आप विचार तो करो। एक स्टूडेंट होता है, मान लिया वो हाई स्कूल में आ गया या इंटरमीडिएट में आ गया, उसकी ऐसी स्थिति होती है वहां पहुंचकर कि यदि मैंने मेहनत कर कोई करियर नहीं बनाया, कोई कॉमर्शियल एजुकेशन, कोई टेक्निकल एजुकेशन, कोई व्यावहारिक एजुकेशन यदि मैंने नहीं ली तो पैसा कमाऊंगा कैसे? मेरी तो शादी भी नहीं होगी, मेरा तो परिवार भी नहीं बसेगा। उसको फ्यूचर नजर आता है ना बिगड़ा हुआ, तो वो होश में आ जाता है। तो उस भविष्य को ध्यान में रखकर वो अपनी मेहनत करता है पढ़ाई के लिए। तो उसके पढ़ने का जो शौक होता है वो अलग तरीके का होता है। तो ऐसे स्टूडेंट को माता पिता को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही माता पिता से कहता है कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ूंगा, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। यही जिज्ञासु की हालत है। जिसके अंदर सतबुद्धि होती है, विवेक होता है, वो होश में रहता है। हर पल वो अध्ययन करता है शास्त्रों का, कोशिश करता है अध्ययन करने की, कोई मिल गया तो उससे पूछने की कोशिश करता है इस मार्ग के बारे में। उसने तड़प की कि इसके बिना मेरी जिंदगी बर्बाद है। तो ऐसा व्यक्ति फिर मौत को याद रखता है कि वक्त कितना बचा है, कितना वक्त निकल गया, फिर कब करूंगा मैं। तो ऐसे व्यक्ति को यदि पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो गुरु से यही बात है कि साधना के बल पर ईश्वर में मन लगाया जा सकता है, लेकिन उसको पता तो हो अंदर जो ईश्वर जो प्रकट होगा वो कैसा होगा, किस रूप में होगा, या मैंने जो संसार में कल्पनाएं बना रखी है ईश्वर के बारे में उसके अनुसार ईश्वर अंदर होगा। तो ईश्वर वैसा अंदर होगा जैसा कि शास्त्र उस विज्ञान को लिख रहे हैं। महाजी कहते थे वो नाद रूप परमेश्वर है, वाणी में आता है वो निरत रूप परमेश्वर है। नाद और निरत ये दो स्वरूप वाणी में ईश्वर के आए हैं। निरत कहते हैं आम भाषा में, इसको योगिक भाषा में कुंडलनी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस उसी को काली कहते थे क्योंकि तो सारे रूप को वो खत्म कर देती है। जब अंदर वो पूर्ण यौवन में आती है या जीव पूरी तरह उसके वश में आता है वहां ना नाम रहता है ना रूप रहता, इसलिए उसका नाम काली। तो रामकृष्ण परमहंस खुद अज्ञानी नहीं है, उन्हें पता है ईश्वर क्या है, इसलिए विवेकानंद से कहते थे वो बार बार नरेंद्र भजन सुनाओ। वो भजन क्या सुनते थे उनसे, ओ कुल कुंडलनी मां। प्रसुप्त भुजंगाकारा आधार पद्म निवासिनी तू नित्यानंद स्वरूपिणी। ये भजन वो विवेकानंद से सुना करते। अब बताइए ये एक गुरु अपने शिष्य से क्यों कर रहा सुनाओ भजन, ये वो खुद सुना तो सुनते थे अकेले, जब मंडली बैठी होती है शिष्यों की इनकी पूरी उस समय कहते थे सुनाओ। खुद तो उसमें वो स्थिति है, अपने लिए क्या सुनेंगे, वो शिष्यों को ही सुनाते। तुम्हें ईश्वर के स्वरूप का बोध तो हो पहले, क्योंकि महाजी की इस सिंपल वाणी को यदि थोड़ा विचार करके देखें तो हमको वो जीव कह रहे हैं। यदि मैं अपने आप को जीव ही नहीं समझता हूं तो वाणी क्या मेरी समझ में आएगी, समझ में ही नहीं आएगी वो वाणी। आप गाते रहोगे कर्ण प्रिय भी लग सकती है, वाणी है, लेकिन समझ में नहीं आएगी। तो मैं जीव हूं, इस देह के बंधन में हूं, इस स्थूल शरीर के बंधन में हूं, लेकिन यदि संता विलास पढ़ोगे तो आगे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं महाराज जी, प्रेमी ये बंधन है कहां, ये बंधन तेरे मन के अंतर्गत है, तेरा संबंध सीधा मन के संग है, मन के कारण तू देह के बंधन में है, तो मन तेरा सूक्ष्म शरीर है और ये ऐसा सूक्ष्म शरीर है जो इस देह की मौत के बाद भी नष्ट नहीं होता, इसलिए जीव और उसका सूक्ष्म शरीर इसको मन कहते हैं या अंतःकरण कहते हैं, वो जीव के संग ही इस देह का त्याग कर देता है और यही मन फिर नई देह को तैयार कर लेता है। लेकिन बिना ईश्वर शक्ति के थोड़ा कर लेगा, तो जिस प्रकार जीव के संग मन निरंतर बना रहता है, उसी प्रकार जीव के संग ईश्वर भी निरंतर बना रहता है। जहां जीव होगा, जहां मन होगा, वहां ईश्वर भी जरूर होगा। तो इसलिए मौत के वक्त भी इन तीनों का जो गठबंधन है, ये कभी नहीं टूटता। देह को आप जला के खाक कर देते हो, लेकिन मन, जीव और ईश्वर ये सदैव वैसे के वैसे बने रहते। इसीलिए ईश्वर शक्ति से ये जीव मन के अनुसार, यानी कि ये अपने संस्कारों के अनुसार ये नई देह तैयार कर लेता है, या यूं कह लिए कि ईश्वर इसके लिए नई देह तैयार कर देता है। तो अब बताइए, जिस जीव के अंदर ये विवेक है, शास्त्र को पढ़ के आ गया है, पूर्ण गुरु का जो ज्ञान है, उसको हम सत्संग कह सकते हैं, सत्संग श्रवण करके उसकी ये बात समझ में आ गई है, वो इस देह के अंदर रहते हुए गलती कैसे करेगा? इस कूड़े रूपी धन को, सत्पुरुषों के लिए कूड़ा, इस कूड़े रूपी धन को कमा के इकट्ठा करने के लिए और धन के द्वारा बड़ा बनने के लिए वो जिंदगी बर्बाद क्यों करेगा? ये वही करेगा जो अभी तक ये भी नहीं समझ पाया कि मैं देह नहीं, ये काम वही करेगा। इसलिए यदि आप मनन करने को तैयार नहीं है, समता विलास को पढ़कर समझने की भी जरूरत नहीं समझते, तो आगे गीता और अन्य शास्त्र क्या समझने आएंगे आप? क्योंकि इससे सरल शास्त्र आज तक कोई प्रकट हुआ नहीं, जो समता विलास प्रकट हुआ, ये प्रभु कृपा है। आज की दुनिया में हम इतनी गहरी माया मोह में फंसे हुए हैं, इतना क्विक डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का और साइंस का, कि हम बिल्कुल ही भ्रमित हो गए, अपने आप को भूले बैठे। तो यदि मेरी बुद्धि होश में आ जाए, या यूं कह लूं कि यदि मैं होश में आ जाऊं, क्या होश में, कि जो मेरी पूर्व देह थी, यही कह ले पूर्व जन्म में देह थी, पूरा जन्म मैं इसी प्रकार बेचैन रहा जिस प्रकार इस वर्तमान जन्म में रहा। हर विद्यार्थी जानता है कि विद्यार्थी जीवन के 24-25 साल बेचैनी के साथ व्यतीत होते, और उसके बाद सर्विस और बिजनेस सेट करने में आदमी के 10-15 साल निकल जाते हैं, फिर परिवार सेट करने में बाकी आयु निकल जाती है। यदि कुछ हाथ लगता है तो बुढ़ापा हाथ लगता है, ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई, तो फिर वो शरीर ही साफ छोड़ने को तैयार बैठ रहता है। हर पल आपको याद दिलाता है मैं जा रहा हूं, तू समझ जा, सोच ले क्या करना है, मैं तो जा रहा हूं। हर पल आपको आपका बूढ़ा शरीर आपको याद दिलाता है। क्या मिला आपको संसार? और हर जन्म में यही करते रहे आप। यदि पशु रहे तब तो इस बात की होश ही नहीं, ये बात तो उन्हीं के लिए हो रही है जो मनुष्य रहे हैं पूर्व जन्म। तो वर्तमान जन्म में भी मैं मनुष्य हूं, मैंने क्या शांति की कमाई की मुझे पता है ये बात। तो जब आप संत विलास को समझोगे तो इसी निर्णय पर पहुंचोगे, मैंने जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद की है, इसका कारणकर्ता कोई दूसरा नहीं, हर गलती का मैं खुद ही जिम्मेदार। इसलिए यदि पूर्ण गुरु मैंने बना भी लिया, उसका मंत्र भी सीख लिया, उसको जाप भी करने लगा, यदि अपने बारे में मैंने समझ ही नहीं सीखी, अपने बारे में समझ ही नहीं आई, तो कैसा ईश्वर और कैसा ईश्वर में मन? तो कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता इन बातों। तो रामकृष्ण परमहंस ये बात कह रहे हैं, तो इस व्यक्ति से कह रहे हैं जिसकी बुद्धि होश में, जो समझ रही है मेरी सारी प्रॉपर्टी पूरे जन्म की कमाई मेरे मन के अंदर सुरक्षित है, और ये कमाई वो नहीं है जो अग्नि के साथ जो है वो देह के साथ जल जाएगी, ये वो कमाई है जो मेरे संग अगली देह में साथ रहेगी। तो मैं कौन सी कमाई इकट्ठी करूं इस मन के अंदर तक, ये मैंने सोचा। तो इसीलिए उस कमाई को ही कहते हैं सतोगुण की कमाई, और सतोगुण की कमाई वही कर सकता है जिसकी बुद्धि में सत का निश्चय, जिसकी बुद्धि में ये होश हो कि मैं कौन हूं, जिसकी बुद्धि में ये होश हो कि इस देह के जलने पर मेरा क्या बचेगा, इसकी बुद्धि में ये होश हो कि ये जो मेरी प्रिय देह है इसको मैं एक मिनट भी अपनी इच्छा से अपने पुरुषार्थ से जीवित नहीं रह सकता, मुझे जीवित देह चाहिए, तो इस देह का जीवन मेरे हाथ में नहीं। तो महाराज जी याद दिला रहे हैं, प्रेमी तेरी देह के अंदर जो जीवन शक्ति है जिसको जीवन कहते हैं, तेरे अंदर जो ईश्वर शक्ति है, जो चेतन सत्ता है, उसको इस बात की होश नहीं आती कि तेरी इस देह का संचालन वो सत्ता कर रही है और तू उसके प्रति गाफिल बना हुआ है, तू गफलत में, तू इस अहंकार के साथ जी रहा है कि मैं देखो देह चला रहा हूं। तो इतनी बेहोश बुद्धि ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करेगी, ईश्वर का होके कैसे जिएगी, जिसको अपने ऊपर ही सारा अहंकार है कि मेरे करने से सब कुछ हो रहा है। यदि देह ना चले ये जीवित ना रहे तो तुम क्या कर पाओगे, विचार करते करते। तो जो तुम्हारी देह को जीवित रखे हुए है सारे मार्क्स तो उसको मिलना चाहिए ना, देह जीवित है तब कुछ कर पा रहे हो ना। तो ऐसे ईश्वर को मैं भूले बैठा हुआ, बीवी बच्चों के चक्कर में, संसार की दौलत के चक्कर में, संसार के कारोबार के चक्कर में। अब बताइए मुझे, यदि सत्पुरुष पशु कह रहे हैं, वाणी हमको पशु कह रही है, ऐसे मनुष्य को वाणी पशु कह रही है, वो मनुष्य कहने को ही तैयार नहीं। बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो कोई, तो मैं पशु कर्म कर रहा, सांसारिक सेवा भी मेरे पशु कर्म के अंतर्गत ही आती है, सेवा उसका विकास करती है जिसको ईश्वर का होश है, नहीं तो ये भी आपको पशु कर्म के अंतर्गत ही आती है। एक गाय घास खाके जीवन भर आपको दूध देती है और हर चीज उसके काम में ले लेते हो, गोबर उसका काम में ले लेते हो, पेशाब उसके काम में ले लेते हो, खाल उसके काम में आ जाती है, हर चीज तो उसके काम आती है, लेकिन गाय कभी भी पशु से ऊपर उठ पाती है क्या? हम इसको सारी जिंदगी पशु ही कहते, एक एडजेक्टिव लगा देते हैं ये श्रेष्ठ पशु है। तो पशुओं में श्रेष्ठ, यदि मैं समाज में अच्छा व्यक्ति हूं तो मैं पशुओं में श्रेष्ठ हूं, बस ये एडजेक्टिव मिल जाएगा सत्पुरुषों की निगाह में। तो सत्पुरुषों की निगाह में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना ऐसी कीमत है, कितनी सेवा संसार में की है ना ऐसी कीमत है। कितना पैसा कमाया है ना इसकी कीमत, तूने अपने बारे में कितना समझा है, ईश्वर के बारे में कितना समझा है, इस वासना के चक्र के बारे में तुम कितना समझा है, उनकी निगाह में इसकी कीमत। इसीलिए सबसे पहले जो गुरु ज्ञान है, जो महाराज जी ने समता विलास के रूप में हमारे लिए प्रकट किया, हमारे लिए छोड़ गए, इसी बात से छोड़ गए कि आजकल का युग ऐसा है कि लोग पढ़ लिख लेते हैं, उसको पढ़कर अपनी जिंदगी के राज को समझेंगे, लेकिन हम ऐसे निकम्मे निकले कि उसको पढ़ने तक की जरूरत नहीं समझी। बड़े लेक्चर दिए, बड़े लेक्चर सुने, लेकिन इसको तो कभी पढ़ के समझने की जरूरत भी नहीं समझी। तो जब तक इस समद अभिलाष की का अध्ययन आप गहराई से ना करो, क्योंकि पूरी साइंस है आपकी, आपकी साइंस है, तब तक आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि जिस वासना चक्र में मैं फंसा हुआ हूं या जिस इच्छा चक्र में मैं फंसा हुआ हूं, जिसको मैं संसार में रहकर और डेवलप कर रहा हूं, अपने दोषों को मैं डेवलप कर रहा हूं, और इतना गहरा अज्ञानी हूं मैं, उसको मैं विकास कह रहा हूं कि मैंने विकास किया। तो तुम डूबोगे संसार में, ज्यादा दुखी होकर संसार से जाओगे या शांति लेके जाओगे? तो ये जो बेहोश बुद्धि जीव है, इसे तो डूबना ही डूबना है, गुरु उसको कैसे बचा सकता है? गुरु उसी को बचाएगा जिसने गुरु ज्ञान को जड़ इच्छा रखकर सीखने की कोशिश की, उसके अनुसार वो दिन और रात सोचता है, अपने बारे में भी और संसार के बारे में और करतार के बारे में दिन रात सोचता है। ये सोच उसका पीछा एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती, एक मिनट के लिए। संसार के सारे कर्म करते हुए उसकी ये जो सतबुद्धि है ये बनी रहती है। इसीलिए संसार की बड़ी से बड़ी बहुमूल्य चीज उसके मन को पकड़ नहीं पाती, उसके मन में बैठ नहीं पाती, वो इनसे अंदर से निर्लेप रहता है, जिसको महाजी उदासीनता कह रहे हैं, इनके प्रति वो उदासीन रहता है। मिल गई तो क्या हुआ, बिछड़ गई तो क्या हुआ? उसके लिए एक ही चीज की कीमत है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जब गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अंदर साधना करता है, दृढ़ निश्चय रखकर, तो मन तो उसका सांसारिक है लेकिन बुद्धि उसकी सांसारिक नहीं है, उसके अंदर सतबुद्धि है। तो वो व्यक्ति साधना के बल पर अंदर ईश्वर में मन वो लगा सकता है, लेकिन मेरे सामने तो ईश्वर प्रकट ही नहीं। तो याद रखिए, ईश्वर की परमिशन से जो मैं साधना करता हूं, जैसे महाजी की दो चीज के लिए परमिशन थी, या वो जो नाम देते थे उसमें मन लगाए, या जिनको फिजिकली गुरु नहीं मिला उनके लिए महामंत्र प्रकट हुआ, महामंत्र में मन लगा, क्योंकि ये विज्ञान भी शास्त्र ही आपको सिखाएगा। जिस पर महाजी की वाणी करिए, मंगत तत् अक्षर गाइए प्रभु दर्शन हो, ये तत् कहते हैं ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म रूप, जब ये ब्रह्म रूप है तो ये मंत्र ही मेरे लिए ईश्वर, नहीं तो ये सत्पुरुषों को ये बात कहने की जरूरत ही क्या पड़ती है। रामकृष्ण परमहंस भी कह रहे हैं मंत्र गुरु ईश्वर एक चीज है, और महर्षि रमण कह रहे हैं मंत्र गुरु आत्मा और कुंडलनी ये एक ही चीज है। और एक जगह वो लिख रहे हैं, उनकी जो एक ही पुस्तक है जो उन्होंने खुद लिखी है, जैसे संतरदास महाजी ने लिखी, ऐसी सिस्टमेटिक नहीं है, जब उनके जो मूड में आया, जो प्रेरणा हुई, उन्होंने लिख दिया। सबका जो कंपाइलेशन है वो पढ़ेंगे तो उसमें एक आगम शास्त्र का ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, छोटे से चक्कर का आत्म साक्षात्कार, उसने वहां लिखा है महर्षि ने, मंत्र आत्मा का स्थूल रूप है, मंत्र आत्मा का स्थूल रूप है। इसको यदि एग्जाम्पल से समझे तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बर्फ पानी का स्थूल रूप है, यदि बर्फ पानी का स्थूल रूप है तो क्या बर्फ कोई नया पदार्थ बन गया? वो पानी ही है। इसी प्रकार गुरु के द्वारा जो मंत्र प्रकट होता है, चाहे वो राइटिंग के रूप में हो चाहे वो मौखिक रूप में हो, वो नाद का स्थूल रूप ही है, वो नाद ही है। यहां आके पता लगता है ये वैदिक काल से लेके आज तक ये योग मार्ग का जो रास्ता लिखा हुआ है शास्त्र में, इसमें कंडीशन ये क्यों लिखी हुई है कि योग मार्ग पे चलने के लिए श्वास के साथ जो जाप किया जाता है वो मंत्र केवल डायरेक्ट गुरु से लिया जा सकता है, बस सीधी कंडीशन है। क्योंकि गुरु वो नाम देगा, वो पानी का बर्फ बनाकर आपको हाथ में देगा, आप ये समझिए। वो गुरु नाद रूप है, वो नाद ब्रह्म है, जिसको महाजी ने समतालास में खुद लिखा, गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है। गुरु का सिद्धांत पढ़ के देखो, पहले वचन लिखो, गुरु ईश्वर है या नहीं है? तो इसीलिए जो नाम देगा वो ईश्वर होगा नहीं होगा। तो मैं प्रारंभ में उस नाम का संग करता हूं, उस सिद्ध मंत्र का संग करता हूं जो ईश्वर रूप, जिसको महर्षि रमा कह रहे हैं गुरु मंत्र ईश्वर एक ही है, जहां कुछ परमस्तर है। तो इस ईश्वर रूप मंत्र का मैं प्रेम से संग करता हूं, इस विवेक के साथ और इस वैराग्य के साथ। तो उस समय भी मैं ईश्वर का ही संग कर रहा हूं, सिमरन के काल में भी मैं ईश्वर का ही संग कर रहा हूं। और इस प्रकार जो विवेक और वैराग्य के साथ ईश्वर का सिमरन करता है, उसके अंदर यही मंत्र अपने स्वरूप को बदल देता है। कहते हैं भक्ति रूपी गर्मी जब इस मंत्र को मिलती है, ये पुनः अपने मूल रूप में प्रकट हो जाता है, जिसको नाद या कुंडलनी कहते हैं। तो फिर ये भक्त उस कुंडलनी का संग करता है, उस नाद का संग करता है। मंत्र में कुंडलनी में अंतर कोई नहीं है, अंतर एक ही है कि मंत्र को याद करने में मुझको एक एफर्ट करना पड़ता था, मंत्र को रिपीट करना पड़ता था, लेकिन कुंडलनी या नाद के प्रकट होने पर उसमें वो एफर्ट आपका नहीं चलता, ऑटोमेटिकली आपको अंदर आभास होता है। जैसे कि एक बांसुरी में यदि राग निकाल रहा हूं तो मुझको एफर्ट करना पड़ता है राग निकालने के लिए, लेकिन बांसुरी की आवाज मेरे कानों में पड़ रही हो तो एफर्टलेस होता है। तो अंदर ईश्वर में मन दो ही रूपों में लगता है, या तो ईश्वर रूप मंत्र के मैं मन लगाऊं, लेकिन कंडीशन फ्री कंडीशन सेम है कि मेरे अंदर विवेक और वैराग्य होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके अंदर ना हो तो वो सिमरन ना करे, ना, उसके साथ ये घटना नहीं शामिल होगी कि साधना के बल पर ईश्वर में मन लगाया जा सकता है, ईश्वर पर मन टिकाया जा सकता है, ये इसके ऊपर लागू नहीं होगी, उसी पे लागू होगी जिसके अंदर सद्बुद्धि है और सद्बुद्धि की पहचान है, उसके अंदर विवेक और वैराग्य है। ऐसा जो जीव है, ऐसा जो साधक है, वो अपने पुरुषार्थ के बल पर, साधना के बल पर ईश्वर पर मन लगाता है।